हेलो
जी मौलाना।
देखिए, आज मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं आपको जो पूरी हिस्ट्री में किसी ने सोचा ना समझा, समझे? वो है अक्यूट सेंस ऑफ रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस। देखिए, एक जस्टिस थे बॉम्बे में, वो हाई कोर्ट के जस्टिस थे। तो वो हमारे मैगजीन पढ़ते थे, हमारी किताब पढ़ते थे। तो एक बार तो आप बॉम्बे में घर पर 2-3 दिन रहा था। वो थे नागपुर के, अब उनका इंतकाल हो गया, एज जस्टिस वो थे बॉम्बे में। तो उन्होंने एक बार तो बातचीत करते हुए कहा था कि आप किताब मैंने पढ़ी हैं और मेरा एहसास ये है कि आपके अंदर रेलेवेंस और इररेलेवेंस का जो अक्यूट सेंस है वो किसी भी आलिम में मैंने नहीं पाया। लेकिन ये सादा बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हर चीज में एक पहलू होता है जो रेलेवेंट होता है, दूसरा एक इररेलेवेंट होता है। दोनों के फर्क को समझना, इसी पर जिंदगी सक्सेस डिपेंड करती है। इसे आप जहां पर हैं वहां पर दो एस्पेक्ट थे, एक थे दावत की अपॉर्चुनिटीज, दूसरी थी कि वहां इंटरनली जो कुछ हो रहा था इससे आप गुस्सा रहते थे और छोड़कर भागने की सोचते थे। तो वो जो इस गुस्सा रहते थे वो इरेलीवेंट था, रेलेवेंट नहीं था। रेलेवेंट जो था वो ये था कि वहां मौके आपको काम करने के हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको काम करने की। तो आप फर्क नहीं करने की वजह से गलत फैसला लेने वाली थी। अब आपने अल्लाह के फैसला सही फैसला लिया तो आप देखिए कितने मौके मिलते हैं आपको। तो ये भी एक सुन्नत रसूल है। अगर जब पूरी हिस्ट्री में किसी भी आलिम ने इस सुन्नत रसूल को नहीं जाना। देखिए, रसूल जब मक्का में दावत का ऑफिस शुरू किया तो आपका भाषण क्या था? भाषण था पैगाम देना, यानी बुत तोड़ना या आपका भाषण नहीं था। बुत तो तोड़ने वाले थे वो लोग जो खुद इस्लाम कबूल करते थे, शिर को छोड़ देते थे। तो ये उनका काम था बुत को तोड़ना, रसूल खुद बुत शिकन नहीं थे। तो आपका काम था लोगों के दिलों में दीन को दाखिल करना। तो काबा में देखे बुत रखे हुए थे, 360 बुत। तो वहां पर दो पहलू थे, एक था बुतों का प्रेजेंस काबा जैसे मुकद्दस घर में, दूसरा दावत की अपॉर्चुनिटी। तो उन्हीं बुतों की वजह से वहां गैदरिंग होती थी डेली। तो आपने दोनों फर्क किया, यानी दावत की अपॉर्चुनिटीज को आपने उसका रेलेवेंट पहलू करा दिया और भूतों के प्रेजेंस को इरेलेवेंट पहलू। तो देखिए कितना फायदा हुआ। उसके बाद मुस्लिम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी गलती हुई कि इस चीज को भूल गए वो। देखिए, मुस्लिम हिस्ट्री में क्या हुआ बात को, अल्लाह ताला ने मुसलमान ने इख्तदार दे दिया, इख्तदार पोलिटिकल पावर। वो पोलिटिकल पावर किस लिए था? वो पोलिटिकल ग्रोली के नहीं था, वो था कुरान को महफूज करने के लिए, दीन को महफूज करने के लिए। क्योंकि पिछली तारीख बताती थी कि पॉलिटिकल पावर ना होने की वजह से पिछले नबियों का दीन महफूज नहीं रहा। तो अब जरूरत थी कि एक सपोर्टिंग एलिमेंट उसके साथ जमा किया जाए, सपोर्टिंग एलिमेंट जो उसकी यानी हिफाजत की जमानत हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पोलिटिकल पावर दिया था मुसलमानों को। मुसलमान ने जो पोलिटिकल एम्पायर बना था उसको उन्होंने लिया फख्र के सेंस में। फख्र के सेंस में नहीं था वो था एक सपोर्टिंग एलिमेंट था दीन को महफूज करने के लिए। मुसलमान क्या हुआ कि पॉलिटिकल पावर का जो रेलेवेंट पहलू था वो ये था कि वो सपोर्टिंग फैक्टर है, और ये रिलेवेंट था कि उसमें आपको इख्तियार मिलता है। लेकिन इसको समझा नहीं। अब नतीजा क्या हुआ कि उसी पॉलिटिकल पावर जो चला गया उसको रीगेन करने के सारे अब वहां लड़ पड़ रहे हैं वन टू ऑल, उसी में जीते हैं, उसी में सोचते हैं, उसी किताबें लिखते हैं। क्यों? उन्होंने रेलिवेंट और इरेलीवेंट को अलग करके नहीं देख पाए। वो ऐसे देखिए, इंडिया में जब आजादी आई तो एक तहरीक उठी बहुत ही हिंदुओं में पावरफुल तहरीक, कि मुगल रूलर्स ने हमारी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है, हम दोबारा उनको तोड़कर मंदिर बनाएंगे। तो मसलन उन्होंने कहा कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा महमूद गजनवी ने, बाबरी मस्जिद कहा उनके नजदीक वहां राम मंदिर था उसको तोड़ा बाबर ने, ऐसे ज्ञान वापी की जो मस्जिद है वहां पर मंदिर था उसको तोड़ा औरंगजेब ने, ये सब कहते थे वो। तो अब मुसलमान क्या लड़ने लिखे हो गए? सही तरीका नहीं था। सही तरीका क्या था? मैंने तजवीज पेश की थी लेकिन उसको उन्होंने माना नहीं, बल्कि मेरे खिलाफ हो गए कि हिस्टोरियन का एक बोर्ड बना दिया जाए, हिस्टोरियन का, इंडियन हिस्टोरियंस का, और उसका ये काम हो कि वो ऐसी मस्जिदों को जिनके बारे में क्लेम करते हैं उनके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस इकट्ठा करें। अगर वो कहे कि हिस्टोरिकल एविडेंस शो करते हैं कि यहाँ मंदिर था तोड़कर मस्जिद बनाएगी, तो मुसलमान इन एडवांस ये मान लें कि उसको तोड़ दो, तोड़कर मंदिर बना दो। और इसके इसके मिसाल भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्लाजीज ने एक चर्च के बारे में उसको तोड़कर मुसलमान ने मस्जिद बनाई थी, हुक्म दे दिया था तोड़ दो, तोड़कर मस्जिद बना लो, मस्जिद तोड़ दो मंदिर बना लो, मस्जिद तोड़ दो चर्च बना लो, लेकिन मुसलमान इसको समझे नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि मस्जिद भी टूटी और मुसलमान 10,000 मुसलमान मार डाले गए इस चक्कर में, अब मिला कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक चीज दूसरी चीज का फर्क नहीं जाना, मुसलमानों फर्क नहीं जाना। तो ये हर मामले में चाहे इंडिविजुअल हो या 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 नेशनल हो, हर मामले में हमेशा कोई भी पहलू हो तो उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि कौन सा एस्पेक्ट रेलिवेंट है आपके लिए, कौन सा एस्पेक्ट इरेलीवेंट है आपके लिए। मसलन कल मैं फराज साहब से कहा कि देखिए, चाइना ने लद्दाख के एरिया में 10 किलोमीटर अंदर आकर के अपने कैंप बना लिए हैं, वहां फौजी बैठा दिया। तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकल एतबार से बहुत सीरियस मामला है। तो मैंने कहा देखिए, ये हम आपको इसमें इंगेज नहीं होना है, इसमें सोचें, इसमें बहस करें, ये करें वो करें, नहीं, हम ये कह दें कि भाई हुकूमत का मामला है, हुकूमत विचार करें। हम उसको हुकूमत की बात कह करके अपने दिमाग को खाली कर लें, तभी हम दावत का काम सही तौर पर कर पाएंगे। तो हमेशा ये मामला रहता है कि आदमी रेलिवेंट और इरेलीवेंट को जाने, वरना फंसा रहता है। जितने भी हिस्ट्री में लड़ाई झगड़े की बातें हुई हैं इसीलिए हुई है, और नेगेटिव जो सारे लोग होते हैं क्यों इसीलिए होते हैं कि शॉर्ट आउट नहीं कर पाते वो। अगर आप शॉर्ट आउट कर लें तो आप कभी भी नेगेटिव ना हो। इरेलीवेंट को आप अपने दबाव में जगा देते हैं तभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, अगर सिर्फ रेलिवेंट को आप दिमाग में जगा दे तो आप कभी भी नेगेटिव ना हो। ये बात आपको समझ में आई?
मौलाना बिल्कुल समझ में आई, एंड इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी ऑल दे एट एनी गिवन टाइम इन एनी सिचुएशन देर इज अ रेलिवेंट एस्पेक्ट एंड एन इररेलीवेंट एस्पेक्ट। इफ वी फोकस ऑन द इररेलीवेंट एस्पेक्ट वी एंड आर नॉट एबल टू सॉर्ट आउट, फिर हम वहां फंसे रहते हैं एंड वी बिकम नेगेटिव एंड वी आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड द सिचुएशन एंड अचीव सक्सेस। But if we focus on the relevant aspect of it, then we can go beyond the issue and continue to do our positive work. For example, you gave the you said that political power was given to Muslims in the form of an empire, but political power was only a supporting aspect of keeping the Quran and the Deen preserved. It was not in the sense of giving power to or iktidar to people, to Muslims. But because Muslims were not able to differentiate between the relevant and the irrelevant aspect, they are till today stuck in the issue that we have lost our political power and we have to regain it. So they are not being able to go beyond the issue and do constructive action.
अच्छा देखिए कल मैंने आपस कहा कि अक्सर फैमिलीज में आप जानते हैं कि झगड़े बरपा रहते हैं शादी ब्याह के मसले को लेकर के. शादी ना हो तब भी झगड़े रहते हैं, शादी हो तब भी झगड़े रहते हैं, हर फैमिली में. तो मैंने आपस कहा कि देखो इसमें किसी फैमिली का एक्सेप्शन नहीं है, ये सब हर जगह रहेंगे. तो हमको तुमको इन चीजों में अपने दिमाग को इंडल नहीं करना है, वरना हम दावती काम नहीं कर सकेंगे. आप जानते जानते कि झगड़े खरम होते हैं.
जी बिल्कुल बिल्कुल सही है मौलाना.
ये मसले ऐसे हैं. अभी देखिए नोएडा में एक डेंटिस्ट ने अपनी बेटी को मार डाला, तो वो बेटी जो है अपने डोमेस्टिक सर्वेंट से वो मामला था
जी.
तो किसी न किसी शक्ल से ये सब बातें लड़कों और लड़कियों के बीच में, शादी हो तब भी ना शादी हो तब भी, हर हाल में सब, हर घर में ये सब चीजें हैं.
जी बिल्कुल सही है वाला.
तो आप उसमें अगर उसमें अवॉइड न करें तो फंसे रहेंगे. तो आपको आपका एक मिशन है, एक एक मकसद है. तो हमें स्टिक करना है अपने मकसद से, अपने मिशन से. उन चीजों में दिमाग लगाएंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सारा जबरदस्ती हो जाएगा. ये बात कितने सही है.
बिल्कुल सही है मौलाना, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू.
हाँ, इसमें किसी घर का एक्सेप्शन नहीं है, हर घर में ऐसी बातें हैं. उसमें दिमाग लगाइए तो सुबह शाम भी उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में झगड़िए.
बिल्कुल सही है मौलाना.
क्या कहा मैंने, क्या मैंने कहा
मौलाना, यू आर सेइंग दैट इन फैमिलीज देर आर ऑलवेज झगड़ाज रिलेटिंग टू फैमिली, शादी, वेदर a wedding takes place or does not take place.
Boy hai tab bhi, friend hai, girl hai tab bhi.
Ji.
Boy ka aur girl ka jhagda ye har ghar mein kisi na kisi roop se hai wo.
Ji.
Ye?
Bilkul sahi hai Maulana.
Shaadi se pehle bhi hai, shaadi ke baad bhi hai.
Bilkul.
Haan.
And if we continue to think of these issues and get ourselves involved in these issues, then our main objective will get jeopardized. So we have to differentiate between the relevant and the irrelevant and focus on our mission, which is the relevant and not other things, and consider it that this happens and we should just leave it.
देखिए कुरान में एक लफ्ज आया है फुरकान.
जी.
फुरकान के माने होते हैं फर्क करना. अल फसल बैन शैन, यानी टू डिफरेंशिएट, बट दो चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट करना.
टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू.
हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरी जिंदगी में. जैसे मैंने मिसाल दिया आपको, काबा की तरफ अल्लाह ने डिफरेंशिएट किया दावत की अपॉर्चुनिटीज को और प्रेजेंस ऑफ ऑर्डर को. फर्क क्या, तभी तो काम कर पाए 13 साल तक, नहीं तो खाली बुद्धों को तोड़ते रहते और काम कुछ ना होता. हुदैबिया में देखिए उन्होंने झगड़ा किया कि रसूलल्लाह के साथ मिटाओ. तो एक तो वहां भी फर्क क्या आप में, एक था कागज पर मिटाना, दूसरा दिलों पर लिखना. तो आपने फर्क क्या कि कागज पर मिटा दो, दिलों पर लिखना काम तो आप जारी रख सकते हैं फिर भी. हम दावत का काम करेंगे। तो ये जो है दो चीजों के दरमियान फर्क करना, ये हमेशा ही रहता है, और इसी में फेल होने की वजह से लोग लोग लो, सारे मामले बिगाड़ देते हैं।
बिल्कुल मौलाना,
पाकिस्तान भी इसीलिए बना कि चंद एक बातों को लेकर के गुस्सा हो गए, और दूसरे बेशुमार बातें थी उसको, तो नतीजा क्या हो गया, पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान आज तक क्या तबाह, लड़ रहे हैं आपस में, मर कट रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम के दरमियान मसला था, अब उससे बहुत ज्यादा मिलियन टाइम शिया मुस्लिम, शिया के दरमियान, सुन्नी के दरमियान, महाजिद के दरमियान, नान महाजिद के दरमियान, संजय साहल के दरमियान, और जो संजय साहल नहीं है उनके दरमियान, ये सब झगड़े झगड़े। तो ये भी इसीलिए हुआ कि लोगों ने कुछ चीजों को वही इम्पोर्टेंस दे दी जो रेलिवेंट चीज को दी जाती है, यानी इररेलेवेंस को रेलिवेंस के इम्पोर्टेंस दे दी। फलस्तीन में या कश्मीर राज्य का यही हो रहा है कि लोगों को फुरकान हासिल नहीं है। फुरकान बहुत अजीब बात है, कुरान में फुरकान, फुरकान की तालीम मौजूद थी, और सारी तफसीरें आप पढ़ डालिए, ये हिकमत, ये विजडम आप किसी तफसीर में नहीं पाएंगे। ये बात पकड़ी आपने?
बिल्कुल पकड़ ली मौलाना।
क्या जिस्ट है?
The gist is that there is a verse in the Quran, or Quran gives the principle of to differentiate between the two. You are saying that in any aspect, in any situation, there are two aspects. One is relevant and the other is irrelevant. We have to ignore the irrelevant and focus on the relevant. If we do not do that, then the entire situation gets jeopardized. And you gave many examples, like the presence of idols when Prophet Muhammad started his mission in the Kaaba. He ignored the, he considered the idol's presence as irrelevant, and the relevant part was that he was able to use the opportunity for dawah when people used to come to.
देखे सुने
जी,
आइडल का प्रेजेंस को आप इरेलीवेंट बताया थी टेम्पररी सेंस में, कब तक रहेंगे? जब लोग तौहीद को कबूल कर लेंगे तो इनका वजूद तो बिट ही जाएगा। इस सेंस में इरेलीवेंट मैंने कहा, परमानेंट सेंस में नहीं, टेम्पररी सेंस में इरेलीवेंट था, परमानेंट सेंस में नहीं। ये फर्क पकड़े आपने?
बिल्कुल पकड़ लिया मौलाना।
कोई बेवकूफ आदमी कहेगा कि वो इरेलेवेंट के साथ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टेम्परेरी सेंस में, परमानेंट सेंस में नहीं कह रहा हूँ। यानी इस हिकमत को जाना आपने कि दिलों में तौहीद दाखिल हो जाएगी तो वही लोग निकाल बाहर करेंगे, वही लोग तोड़ फेंक देंगे उसको जिन्होंने उसको रखा था वहां। ये बात पकड़े आपने?
बिल्कुल मौलाना। That this is a very important aspect, that दिलों में तौहीद आना is the more important thing. And if he had confronted in the beginning, then दिलों में तौहीद नहीं आती. So he differentiated between the two.
ये बात कितनी important लगती है आपको?
बहुत ज्यादा important है मौलाना। It's a very important principle to continue to focus on positive opportunities and continue to work.
आपके personal life के लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए भी।
बिल्कुल मौलाना, बिल्कुल।
हाँ।
So very very important principle.
हाँ। ठीक है, यही बात बताना था आपको।
जी मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। This concept I did not know, and how you related it from Furqan to this, it is very very important, and it gives you a method of how to continue your journey to do individually for the mission, for the community, for the nation and internationally.
अच्छा, ये पॉइंट क्या है, इसका भी है कि संडे क्लास में इसको?
बिल्कुल मौलाना, बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नोबडी नोज दिस।
तो संडे क्लास के ठीक रहेगा?
बिल्कुल ठीक रहेगा मौलाना, नोबडी नोज दिस। फुरकान को इस तरह से किसी ने नहीं बताया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
अच्छा जदाकुल, अच्छा ठीक है, सोचते हैं इसको।
जी,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम।